कमलेश्वर से मेरी पहली मुलाकात सन 2001 में हुई थी। 26 जनवरी का दिन था। वो बीबीसी के लाइव कार्यक्रम में भाग लेने बीबीसी के पुराने दफ्तर आईफैक्स बिल्डिंग में आए हुए थे। अचानक बहुत जोर से धरती हिली थी और दफ्तर के सारे लोग भूकंप भूकंप चिल्लाते हुए भागकर सड़क पर पहुंच गए थे। एक अकेले कमलेश्वर हाथों में डनहिल की सिगरेट लिए कश लगाते वहीं पेंट्री में खड़े रह गए थे। मेरी तरफ देखकर बिना किसी घबराहट के बोले थे, यहीं बैठिए, कुछ नहीं होगा। उनसे दूसरी मुलाकात शायद 2 साल बाद हुई थी और मैं उनसे पूछ बैठा था, आप कई शहरों में रहे हैं, मैनपुरी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली, इनमें से किस शहर से आप अपने आप को सबसे नज़दीक पाते हैं?
कोई शहर ऐसा नहीं है जिसे मैं भूल सकूं, चाहे वो मैनपुरी हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो या बम्बई। बड़ी खूबसूरत यादें मैनपुरी की हैं। एक हमारे यहाँ ईशान नदी हुआ करती थी, उसे ईसन बोलते हैं हम लोग, तो उसके किनारे घूमने जाना, शैतानियाँ करना, जंगलों में चले जाना और वहाँ से मतलब बेर तोड़ना, आम तोड़ के लाना, खेतों में से मतलब सब्जियों की चोरियाँ करना, तो ये सब चलता था और बड़ा अच्छा लगता था। सबसे बड़ी चीज़ जो थी, मैनपुरी में ही मेरा पहला इश्क भी हुआ। उस वक्त तो ये होता था कि ये मालूम नहीं था, कोई अच्छा लगने लगा तो लगा इश्क हो गया, लेकिन वो होता कुछ नहीं था। लेकिन एक पता नहीं क्यों, एक बंदी बधाई एक रवायत सी थी, जिस रवायत में ये होता था कि मेरे और उसके बीच में ये बहुत ही घटिया समाज बीच में आ रहा है। कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी, ना उसके देखने की हिम्मत होती थी कि वो मुझे भराग देख ले, ना मेरी हिम्मत होती थी। तो दूर दूर से ये करीब करीब समझिए कि 2.5-3 फरलांग दूर से ये इश्क चला करता था। जब उसकी शादी होने लगी तब मामला गंभीर हो गया, क्योंकि उस वक्त महसूस किया कि कुछ खो रहा है। मेरे बाल काफी बड़े हुआ करते थे तो माँ को पसंद नहीं थे, तो शादी में जाना ही था, भीतर से रूह मन रो रहा था, लेकिन माँ ने नाई बुलवा के घर पर बाल इतने छोटे करवा दिए जैसे आर्मी वालों के होते हैं, तो मैं इतने औसान खो चुका था कि फिर मैं उस शादी में गया ही नहीं।
कमलेश्वर का साहित्यिक बपतिस्मा इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के बारे में एक बार कमलेश्वर ने लिखा था, एक सोचता हुआ शहर, कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, इस सब से ऊपर इलाहाबाद के आदमी की पहचान ही यही थी कि वो सोचता क्या है।
वो दौर भी इलाहाबाद का बड़ा सुनहरा दौर था, बड़े से बड़े लेखक इलाहाबाद में मौजूद थे। मेरे अपने गुरु बच्चन जी इलाहाबाद में पढ़ाते थे, फिराक साहब थे, सुमित्रा नंदन पंत थे, महादेवी थी, निराला जी थे, किस किस को याद करें, हम लोग थे सब नई पीढ़ी के, धनवीर भारती थे, मार्कंडे थे, दुष्यंत थे, ओंकारनाथ श्रीवास्तव थे, अजित कुमार थे, कितने लोग थे, there was a galaxy of people। इलाहाबाद में एक इस तरह का इंटेलेक्चुअल माहौल हुआ करता था, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, सॉलिसिटर्स हों, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्राध्यापक लोग थे वो तो जिसे कहना चाहिए कि यानी 9 रत्न तो बहुत छोटा जुमला हो जाएगा, यानी वो कम से कम सैकड़ों रत्नों की यानी एक मंजूषा थी। अड्डे हम लोगों के, अगर हम लोग अकेले बैठते थे 2-3-4 दोस्त तो रामाज हुआ करता था, कॉफी हाउस था, और वहाँ की खासियत ये थी कि जो बिल्कुल ताज़ा किताब आई है या ताज़ा विचार आया है वो अगर उससे आप परिचित नहीं हैं आज तो आप उस महफिल में मंजूर नहीं किए जाते थे उस शाम।
कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव ने मिलकर स्थापित किया था नई कहानी का त्रिकोण। उस जमाने में मोहन राकेश उनके सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। कमलेश्वर लिखते हैं कि जब राकेश अपनी पहली शादी के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे तो उनके साथ कोई बारात नहीं थी। लड़की वालों को आश्चर्य भी हुआ था कि दूल्हा अकेले आया है, पर यही तो थे मोहन राकेश।
हम लोग साथ साथ रहते थे 9 वर्ष, हम और मोहन राकेश एक ही घर में ऊपर नीचे, राकेश बरसाती में ऊपर थे, मैं उसके नीचे रहता था। तो वो जमाना वो था कि जबकि जो पंजाबी लोग आए थे पार्टीशन के बाद उनको लोग अपने घर किराए पर नहीं देते थे। तो होता ये था कि फिर राकेश की माँ को मैंने अपनी माँ बनाया और मेरे नाम पर मकान लिया गया। क्योंकि हम लोग दिन भर मस्ती में बातें करना, गप्पे लड़ाना, अपने अनुभव एक्सचेंज करना, तो होता ये था कि हर वक्त जब भी कोई आए हम लोग कॉफी हाउस में या टी हाउस में बैठे होते थे। तो एक रोज किसी ने पूछा कि राकेश भाई आपका क्या मतलब कार्यक्रम, दिनचर्या क्या रहती है? तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, हम रात को पहुंचते हैं कोई 11:30-12 बजे घर, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। कल के कि फिर उठते हैं 11-12 बजे दिन को, कल के सुबह की चाय आए पीते हुए 12:30-1 हो जाता है, फिर कहेंगे कि फिर क्या, फिर बस जरा सा नाश्ता किया, शेव किया, नहाए धोए, तो इसी में 4:30-5 बज जाते हैं। कहेंगे फिर कॉफी हाउस आ जाते हैं। तो कहेंगे तो आप लिखते कब हैं? उनका लिखना लिखते हम कल हैं।
कमलेश्वर के एक और दोस्त थे दुष्यंत कुमार, बाद में उनके पुत्र आलोक से उनकी बेटी मानो की शादी हुई। आलोक त्यागी याद करते हैं।
जब पापा का निधन हुआ, उस निधन से ठीक पहले ये लोग उज्जैन में मिले थे, एक टेपा सम्मेलन होता है उज्जैन में। पापा ने उनसे बहुत कहा था कि यार तू चल, इस समय मैंने कुछ गजलें लिखी हैं, ये 75 की बात है। दोनों का नहीं, तुम यही हम सुनते हैं और यही बात है, अब मेरे प्रोग्राम्स टाइड अप है बॉम्बे में। तो पापा ने कहा यार अब नहीं चलेगा तो क्या मेरी मौत पे आएगा। और कुछ दिनों बाद पापा का निधन हुआ। पापा के निधन के बाद मतलब यू द फर्स्ट पर्सन टू, मैंने जिनके बारे में मैं सालों से पापा के मुंह से सुनता आ रहा था, बल्कि होता यह था कि मैं कोई भी ढंग का यदि कोई काम करूं या कोई ढंग की बात भी करूं तो वो हमेशा कहते थे कि यार राजो, मतलब मेरी मदर को राजो बुलाते थे पापा, तो बोलते थे राजो ये मुझे कमलेश्वर की याद दिलाता है। मेरे लिए कमलेश्वर की छवि वो एब्सोल्युटली लार्ज इन लाइफ, मुझे बहुत वो लगता था। और मैं उन्हें रूबरू देख रहा हूँ कि हमारे घर में इतना बड़ा संकट और इतने दुख के बादल, और उसमें यदि कोई हमें आश्वस्त करने के लिए, हमारे दुख में साथ खड़े होने के लिए कोई व्यक्ति सामने है तो वो कमलेश्वर जी।
हिंदी साहित्य में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो कहानी, उपन्यास, मीडिया और टेलीविजन के साथ साथ उतनी ही शिद्दत से फिल्मों से भी जुड़े हों। मैंने कमलेश्वर से पूछा कि हर घाट का पानी पीने के बाद जब आपने फिल्म लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया तो क्या आपने अपने आप को वहां मिसफिट पाया?
रेहान भाई, मुझे मिसफिट नहीं मैंने अपने को पाया। उसकी वजह एक तो ये थी कि मुझे जो फिल्म की हमारी मिलीजुली संस्कृति की कल्चर है वो मुझे बड़ी रास आती थी। एक कंपटीशन जरूर होता था, लेकिन वो कंपटीशन तब होता था जब फिल्में सफल होती थी। मैंने ये तय जरूर कर लिया था कि एक तो मेरे पास चूंकि जबान वही थी जिसकी जरूरत वहां होती है, जो राही के पास भी मतलब बहुत शिद्दत से मौजूद थी। राही को अलीगढ़ से कुछ लोगों ने तैयार किया था कि वो जाएं, और हमने और भारती जी ने राही का स्वागत किया था बॉम्बे में कि राही जैसा लेखक आए, ये इसी हिंदुस्तान में मुमकिन है। भारतीय दूरदर्शन का सफलतम सीरियल महाभारत डॉक्टर राही मासूम रजा लिखते हैं, इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं समझता कि दुनिया में कहीं किसी के पास है। एक तो ये था कि ऐशो आराम बहुत था, उसके साथ साथ ये भी एक स्थिति थी कि भाई लिखिए लिखिए बस ठीक है, अब एक दफा आपको मंजूर अगर कर ले इंडस्ट्री तो उसके बाद तो फिर सब कुछ आपके लिए है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी।
इस दौरान उनकी फिल्म आंधी काफी चर्चित हुई, जो उनके उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी, और उसे गुलजार ने निर्देशित किया था। कमलेश्वर ने उससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया था।
करीब 15-17 साल के बाद एक प्रोड्यूसर मेरे पास एक कैसेट लेके आए और कह लगे ये एक पाकिस्तानी फिल्म है और कमलेश्वर जी इसको आप ही लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए और किसी तरह से इसको आप हिंदुस्तानी में कुछ करें, आप इसका थोड़ा स्क्रीन प्ले बदलिए। जब मैंने वो फिल्म देखी तो देखा कि मेरी आंधी का प्लेगराइज्ड वर्जन पाकिस्तान में जो बना था वही मेरे पास लौट के आया
था। जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा
मुंबई प्रवास के दिनों में कमलेश्वर बहुत व्यस्त रहा करते थे। वो टेलीविजन पर बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम परिक्रमा कर रहे थे, सारिका के संपादन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी और फिल्म लेखन तो जारी था ही। कमलेश्वर की बेटी मानो याद करती है।
उस जमाने में तो बहुत ही व्यस्त थे वो, दूरदर्शन पे शो आता था, फिल्में लिख रहे थे, संपादन कर रहे थे सारिका का, तो इतने व्यस्त होते थे, 4 या 5 घंटे की नींद होती थी उनकी। पर हमारे यहाँ एक नियम रहता था कि रात का खाना हम तीनों साथ में खाते थे, मम्मी मैं और पापा। कई बार रात हो जाती 10 बज जाते तो मम्मी कहते तुम सो जाओ, पापा पता नहीं अभी आएंगे, फिर अपना थोड़ा बहुत लिखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो मुझे उठा पापा ही मुझे उठाते थे, बेटा खाना खाने चले, मैं भी उठ जाती थी। मुझे भी ऐसा लगता था यही तो टाइम है मुझे पापा से मिलने का।
उसी दौरान उनके दोस्त धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक हुआ करते थे और उनके गुरु हरिवंश राय बच्चन भी मुंबई में रहा करते थे।
एक बार शायद बच्चन जी का जन्मदिन था, हम तीनों गए थे पार्टी में। उस समय सलीम जावेद जी सब लोग थे उस पार्टी में, सब जैसे चूंकि उनके बेटे अमिताभ बच्चन जी भी काफी प्रसिद्ध अभिनेता थे उस समय। कुछ चीज बच्चन जी सुनाने जा रहे थे कुछ, एकदम से पापा शायद थोड़ी देर पहले उठे थे वॉशरूम जाने के लिए, तो एकदम सब लोग बोले नहीं अरे सुनाइए आप सुनाइए। बच्चन जी ने कहा कि नहीं अभी रुको, कमलेश्वर आ जाए तब फिर मैं सुना। तो वो मुझे ऐसा लगा कि पापा को कितना वो प्यार करते हैं और कितना वो मानते हैं, और जब पापा आए फिर तब उन्होंने अपनी बात शुरू की।
ओ अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला।
गजब की आवाज थी कमलेश्वर के पास, उसमें विनोद और वाक्पटुता का पुट उसे और आकर्षक बना देता था। उनके दामाद आलोक त्यागी बताते हैं,
एक बेहद शार्प विटी पढ़े लिखे इंसान तो थे, पर बेइंतहा सहृदय आदमी थे, जो दूसरों की भावनाओं का इतना ज्यादा ख्याल रखते थे कि मैंने कम देखा है। और दुश्मनों को माफ करने के तो मैंने इतने सारे किस्से, मतलब जब मैं दिल्ली में हम लोग साथ साथ रहे वहां पर, और मैंने देखा कि जिन लोगों ने उन पे इस तरह के अटैक्स किए उसके बाद भी जब उनको यदि जरूरत पड़ी तो कमलेश्वर जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प देम। वो पहले स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं दूरदर्शन के, पहले न्यूज रीडर बनते हैं, फिर उसके बाद वो संपादन के लिए बंबई जाते हैं, और फिर उसके बाद फिल्मों के लिए भी लेखन वहां पर चल रहा है। टेलीविजन का जो पहला बहुचर्चित प्रोग्राम है परिक्रमा, वो करते हैं जो आम आदमी की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये जो नई नई चुनौतियां स्वीकार करने का जो उनके अंदर जज्बा था जिसने उनके व्यक्तित्व को पूरा बनाया, और वो सारे जितने भी विधाओं में उन्होंने वो काम किया, वो अल्टीमेटली जाके उनके मैग्नम ओपस कितने पाकिस्तान में दिखाई देता है।
खाना खाने के शौकीन कमलेश्वर को खुद खाना बनाने का भी शौक था।
बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे, बहुत अच्छे कबाब, मतलब नॉन वेजिटेरियन थे और नॉन वेज डिशेस तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। और मेरी मम्मी का तो हर दिन टेस्ट होता था, अगर उन्होंने बनाया मेरी मम्मी ने तो अगर गलत बना तो बोले तुमने ये नहीं डाला होगा इसमें इसलिए गड़बड़ हो गया। जितनी भी सब्जियां होती थी वो खरीदने खुद ही जाते थे, सारी जो हरी सब्जियां होती थी उनको अलग करना, तोड़ना, बीनना और पैकेट्स बना के मम्मी को देना कि ये मेथी मैंने तोड़ दी है, ये पालक है, धनिया है, ये सारी सब्जियां वो अलग करते थे। एक पूरा उनको बहुत सुकून मिलता था इसको करने में। वो जब बहुत बीमार भी हुए थे डॉक्टर्स ने कहा आप इतना घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेगा कमलेश्वर जी, तो आलोक से उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि आलोक मुझे एक बार सब्जी मंडी ले चलो, मैं मेरी तबीयत ना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो आलोक को लेके गए और आप बिलीव नहीं करेंगे ताजगी आ गई उनकी, डॉक्टर जो बिलीव नहीं कर रहे थे बिल्कुल अच्छे होने लग गए।
100 से अधिक फिल्में लिखने वाले कमलेश्वर को खुद फिल्में देखने का शौक नहीं था, हाँ अच्छा संगीत और गजलें सुनना उनका शुगल होता था।
वैसे तो दुष्यंत कुमार की गजलें बहुत पसंद है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल से थर थर आता हूँ, तेरी आंखों में एक जंगल है जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, या फिर दुष्यंत की उस इमरजेंसी के दौर की गजलें, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। मैं जगजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ, मुझे अहमद फराज की जो एक गजल है रंजिशी सही, वो मुझे बेहद पसंद है।
फिर से मुझे छोड़ के जाने लिए आ, दिल दुखाने लिए गा।
अपने 75 साल की जिंदगी में कमलेश्वर ने 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और 100 से ऊपर फिल्मी पटकथाएं लिखी। 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मशहूर रंगकर्मी और उन्हें नजदीक से जानने वाले शरद दत्त याद करते हैं।
मेरे एक मित्र थे, हमारे कॉमन फ्रेंड थे, राजेश्वर नाथ, जो बहुत ही पुराने आकाशवाणी से जुड़े हुए थे और बाद में मेरे साथ तो टीवी में प्रोड्यूसर भी बने। वो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका सेटल हो गए और वही वर्षों बाद जब आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो उस दौर के लोग हैं हम लोग मेरे घर पे शाम को मिले। तो मैं, शिव शर्मा, कुछ और हमारे दूरदर्शन के पुराने सहयोगी थे, हम लोग वहाँ शाम को मिले और वहाँ कमलेश्वर अपनी पत्नी के साथ आए थे। कमलेश्वर बहुत चेन स्मोकर थे, उसकी वजह से उनके वो कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी थी, लंग्स की भी प्रॉब्लम थी। तो उस दिन वो काफी देर हमारे साथ रहे और उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह सैटरडे पड़ेगा, उस दिन सब लोग आप मेरे घर आइए। और उन्होंने मुझसे कहा कि शरद जी आपकी ड्यूटी है कि आप उनको मेरे घर लेके आएंगे। मुझे अभी उनका जुमला याद है कि मैं दूर रहता हूँ लेकिन मैं आप लोगों के दिल से दूर नहीं हूँ। उसके बाद मैंने उनको गाड़ी में बिठाया, मैंने उनको सी ऑफ किया और उसके बाद रात को लेट नाइट मुझे किसी का फोन आया कि आपने कमलेश्वर जी के बारे में समाचार सुना, वो नहीं रहे। इट वॉज ए शॉकिंग थिंग टू मी। लेकिन मुझे उस शख्स की जो चीजें बहुत अच्छी लगी कि एक तो वो थे कि वी वॉज ए वेरी गुड फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आप उनके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर जाएं, उनको कोई इस बात में वो नहीं था कि वो एडिशनल डायरेक्टर हैं, आप उनके माता थे, वो बिल्कुल आपको इक्वल लेवल पे ट्रीट करते थे। ही वाज फुल ऑफ एनर्जी, उन्होंने इतना काम किया, लगभग 100 फिल्में उन्होंने लिखी, टेलीविजन की डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, रनिंग कमेंट्रीज की, स्क्रिप्ट लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, मतलब ना एक आदमी कर सकता था। उसके बाद ही वॉज वेरी सोशल, वो आपको हर फंक्शन में नजर आते थे। आप उनको कनॉट प्लेस के रोड साइड ढाबे में बैठे हुए खाना खाते देख सकते हैं जबकि वो कभी भी फाइव स्टार होटल में जा सकते थे। और उनमें कशिश थी कि जो उनसे पहली बार मिलता था फिर उन्हीं का होकर रह जाता था।
रेहान पटेल, बीबीसी दिल्ली।